नहीं सोचा और ना सोचना, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा बाऊजी। मैं अंश के सामने कभी नहीं आऊंगा, कभी नहीं। मैं दोनों के बीच कभी नहीं आऊंगा बाऊजी, कभी भी नहीं। कोशिश तो कर रहे हो तुम बीच आने की। ऐसा ना होता तो वो पुरानी यादों से जुड़ी चीजें उनके बीच नहीं लाते तुम, जिनसे अब कोई वास्ता नहीं। पर तुमने ये किया। क्या लगता है तुम्हें, आरवी का सहारा लेकर तुम वो जगह पा सकोगे कभी जो तुम्हारी ही वजह से तुमसे छिन गई? आरवी का इस्तेमाल कर हमारी जिंदगी में तुम वापस लौट पाओगे? अगर ऐसा है तो भूल जाओ। नफरत ही नहीं, तुमसे तुम मर भी चुके हो हमारे लिए। कितना ही मेरा बेटा बाऊजी कर लो, कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा बाऊजी, और ना ही मैं आरवी का सहारा ले रहा हूँ वापस घर लौटने के लिए। जो मैंने किया है उसका मैं सिर्फ पश्चाताप ही कर सकता हूँ, और कुछ भी हासिल नहीं हो सकता मुझे। क्यों करूँगा मैं ऐसी कोशिश जिससे आपको और अंश को और तकलीफ पहुँचेगी? क्यों करूँगा मैं ऐसी कोशिश जब मुझे कुछ मिल ही नहीं सकता? नफ़रत मिट सकती है, मरे लोग कहाँ वापस आते हैं बाऊजी, और मैं कभी नहीं आऊँगा। आपके लिए आपका बेटा और अंश के लिए उसका पिता, जिसका नाम अनिकेत था, वो मर चुका है। ऐसा कुछ करना होता, अपनी जगह पानी होती, तो मैं सालों पहले ही ये कर चुका होता। पर मुझे पता है जो मेरी जगह थी वो भी अब मेरी नहीं रही। बस खुश रहने के लिए आप दोनों को याद कर लेता हूँ। आप बाऊजी हैं और अंश मेरा बेटा। मैं ना सही, पर आप दोनों आज भी मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पर जब आप दोनों की नफ़रत का ख्याल आता है तो कमबख्त दिल बैठ सा जाता है, सीने में दर्द सा उठता है। सहन तो नहीं होता, पर सहने के अलावा कोई चारा भी नहीं होता। आप भले याद ना करें मुझे बाऊजी, पर मैं आपको नहीं भूला। कभी अच्छी यादें जीने का सहारा बन जाती हैं, तो कभी कड़वी यादें जान निकाल लेती हैं, पर मौत नहीं आती। आई भी कैसे? अपने गुनाहों की सज़ा अभी तक कहाँ पाई है मैंने? अभी तो सज़ा बहुत बाकी है। इतना कहकर डॉक्टर कपिल ने गहरी सांस ली और ख़ुद को संभालते हुए फिर बोले, अब मैं डॉक्टर कपिल हूँ, डॉक्टर कपिल। मैंने नाम के साथ साथ खुद को भी बदल लिया है बाऊजी, इतना कि कोई मुझे देखकर भी नहीं पहचान पाता कि मैं अनिकेत हूँ। बदला नाम के साथ साथ खुद को, ताकि मुझे देख कोई मेरा जिक्र भी आप दोनों के सामने कभी ना करे। मेरे जिक्र से भी आपको तकलीफ पहुँचे, ये नहीं चाहता था मैं। कोई मुझे आपसे रिलेटेड बताए और आप दोनों हर्ट हों, इसलिए मैं आप दोनों से दूर चला गया और ख़ुद को बदल भी लिया। सालों बीत गए पर आज तक कोई नहीं पहचान पाया। बस एक आप ही हैं जिन्होंने मुझे वर्षों बाद अनिकेत नाम से पुकारा। सही कहा है जिसने भी कहा है कि माता पिता अपने बच्चों को बंद आंखों से भी पहचान लेते हैं। पर सच में मैं आरवी का सहारा नहीं ले रहा बाऊजी, नहीं ले रहा। अंश की जिंदगी में आने वाली लड़की आरवी ना होती तो मैं आपके सामने भी ना आता। जैसे पहले दूर रहा 18 साल, आगे भी नह लेता। आपने शक्ल ना दिखाने को कहा था, आज तक आया क्या सामने? नहीं ना, वो तो उस दिन अनजाने में सामने आ गया। नहीं पता था वर्तिका जिसका चेकअप करने जिस घर में आ रहा हूँ वो मेहरा सदन है। पर बाऊजी, मैंने अपनी गलती फिर नहीं दोहराई। मैं आपसे या अंश से ही नहीं, अब आरवी से भी दूर रह रहा हूँ। उससे बात भी कम करता हूँ ताकि आदत छूट जाए। हो सके तो साथ ही हमारा, मुझे वो भूल ही जाए, ये दुआ कर रहा हूँ। मैं उससे बहुत दूर चला जाऊँगा, नहीं लौटूंगा। तो नाराज़ हो जाएगी, शायद अंश जैसे नफरत भी करने लगे वो मुझसे। मंजूर होगा मुझे, पर मैं उनके रिश्ते के बीच कभी नहीं आऊँगा। मेरी वजह से उनके रिश्ते पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अंश की खुशी, आरवी हमेशा उसके साथ रहेगी, मेरे कारण उसकी खुशी दूर नहीं होगी। मैं अब कभी आरवी से नहीं मिलूंगा। इतना कहकर डॉक्टर कपिल फिर गहरी सांसें लेने लगे। साफ पता चल रहा था उनके बोलने के ढंग से कि उन्हें ये सब कहते तकलीफ हो रही है, और जब ऐसा होगा, आरवी से वो खुद को दूर कर लेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ से गुजरना होगा। पर वो अपने बच्चों की खुशी के लिए ये सब भी करने को तैयार थे। उनकी बातें सुन दिनकर जी अपनी आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि वो महसूस कर पा रहे थे डॉक्टर कपिल के लिए ये सब कहना आसान नहीं हो रहा था, तो करना कितना मुश्किल होगा। डॉक्टर कपिल के साथ साथ वो आरवी के बारे में भी सोचने लगे कि वो डॉक्टर कपिल को कितना मानती है, कितना मोह है उसे। ये चला जाएगा तो उस पर क्या बीतेगी, कितनी दुखी होगी। मनपसंद शख्स का जिंदगी से चले जाना आम बात नहीं होती, बहुत तकलीफ होती है। अपने पोते को वो इस सबसे जूझती हुए देख चुके हैं, अब आरवी को कैसे देखेंगे? दूसरी तरफ छाई खामोशी सुन डॉक्टर कपिल फिर बोले, बाऊजी क्या सोच रहे हैं आप? दिनकर जी, आदत से कितने मजबूर होना तुम, जो अंश के साथ किया तुमने वहीं उस बच्ची के साथ करने जा रहे हो। हम बड़े थे, खुद को संभाल लिया हमने, पर तुम्हें पता भी है हमने अंश को कैसे संभाला था। कितना कठिन रहा था उस वक्त अपने बच्चे को संभालना हमारे लिए। बिखरते को समेटना आसान नहीं होता, हमने समेटा, पर जो था वो नहीं रहा हमारा बच्चा, कुछ और ही बन गया। क्या चाहते हो, अब आरवी को हम उस सबसे गुजरते देखें, जो अब है आरवी, उसे खो दे। अंश ने सहा था तब वो बच्चा था, आरवी बड़ी है माना, पर उसका दिल बच्चा सा ही है। तुम्हारे किए की वजह से अंश का मासूमपन छिन गया, अब तुम क्या चाहते हो, आरवी की मासूमियत भी छिन जाए? सब जानते हुए भी तुम वही सब दोहरा रहे हो। आरवी को तुमने अपने जिस मोह में फंसा रखा है, और जब वो इस मोह से निकलेगी तो उसे ठेस पहुंचेगी। तुम दूर जाने की बात कर उसका दिल दुखाकर खुद को महान साबित करने में लगे हो। ये सुन डॉक्टर कपिल हंस दिए। आदत से नहीं, हालात से मजबूर हूँ बाऊजी। कमाल है ना, मैं सामने आऊं ये भी आप नहीं चाहते, और मैं दूर जाऊं ये भी आप नहीं चाहते। पर मैं समझ रहा हूं बाऊजी, आपको आरवी की चिंता हो रही है जैसे आपको अंश की फिक्र होती है। अंश भी मेरे मुंह से बंधा था, दूर हुआ छूट गया मुंह, आरवी का भी छूट जाएगा। तकलीफ होगी उसे, पर आप और अंश होना, संभाल लेना उसे। अंश निकल गया मेरे मुंह से, आरवी भी निकल जाएगी, आप हो उनके साथ। अंश को संभाला था आपने, आरवी को भी आप संभाल लेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप पर। आरवी कमजोर नहीं है बाऊजी, और अंश भी है उसके साथ, बहुत जल्द संभल जाएगी। और मेरे दूर चले जाने से उतनी तकलीफ नहीं होगी हमारे बच्चों को, जितना मेरा आरवी से जुड़े रहने पर उनको हो सकती है। उस सब से बचाने के लिए अपने बच्चों को मैं ये कदम उठा रहा हूँ। महान नहीं बन रहा, बस एक पिता होने का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिनकर जी गंभीर लहजे में, कर पाओगे डॉक्टर कपिल? करना होगा बाऊजी, ये तो है नहीं पहली बार होगा ऐसा, पहले भी कर चुका हूँ। अपने बच्चे, अपनी खुशी से खुद को दूर, पहले गलतियों की वजह से हुआ था, अब करूंगा जानबूझकर। और आसान तो नहीं होगा, पर करना तो होगा ना। फिर से अपने बच्चे को खुद से दूर आसान नहीं होगा, पर करना तो होगा। एक पल रुक कर, जरूरी है ये करना। आपको पता है बाऊजी, आरवी अंश से मुझे मिलाना चाहती है। वो अंश को मेरी फोटो दिखाने वाली थी, बट बोल रही थी कि नहीं दिखाई, मैं खुद ही आकर उससे मिलूं। दिनकर जी चौंकते हुए, क्या? हाँ बाऊजी, पर चिंता मत कीजिए, मैं ना तो कभी मिलूंगा अंश से, और ना ही आरवी मेरी फोटो कभी अंश को दिखाएगी। मैंने कसम दी है उसे, जिसे वो जरूर निभाएगी। मैंने कहा है कि मैं खुद मिलने आ जाऊंगा, पर मैं नहीं आऊंगा। और रही बात लॉकेट वाली, तो बाऊजी वो लॉकेट अनु की आखिरी निशानी है, जिसे अंश के पास होना चाहिए। भले ही वो लॉकेट अब उसे पसंद नहीं, पर उसकी मॉम का लॉकेट है वो। जितनी वो मुझसे और अनु से नफरत करता है, उस हिसाब से शायद ही उसके पास कुछ होगा हमारा। पर ये लॉकेट उसके पास ना सही, पर आसपास तो रहेगा ना आरवी के कारण।
दिनकर जी, और उसे देख तकलीफ हो भी अंश को, उसका क्या? आज अंश ने उस लॉकेट को देखा, उसके मन का दर्द उसकी आंखों में दिखाई दिया मुझे। यूं तो वो खुद के इमोशन पर बहुत कंट्रोल रखता है, पर हम समझ सकते हैं कौन सी चीज उसे कितना प्रभावित कर सकती है। फिर उसे तकलीफ ना हो, इसलिए हमने आरवी को वो लॉकेट ना पहने कहा, पर पता नहीं कब तक वो उसे नहीं पहने भी। फिर उसने पहना तो मेरे अंश के सामने दर्द भरा मंजर फिर चलाएगा, जो हम नहीं चाहते। नहीं होगा बाऊजी, मैं बोल दूंगा आरवी को ना पहने, बस पास रखे। ना देते तो बेहतर ना होता? क्या करता बाऊजी, मैं कब तक संभाल पाता उस लॉकेट को? मैं एक जगह रहता ही नहीं, और ना उसे खोना चाहता था। मुझसे बेहतर आरवी संभाल पाएगी, ये सोचकर मैंने आरवी को दे दिया अनु का वो लॉकेट। और बाऊजी, आरवी अब सिर्फ मेरी बेटी नहीं, बहू भी तो है, मेरे बेटे की पत्नी। तो उसका ससुर होने के नाते मुझे उसे शगुन के तौर पर कुछ देना ही था ना। मैं तो कुछ और भी देता उसे, पर अनु की तरफ से क्या देता समझ नहीं आया। तो वो लॉकेट मैंने अपनी और अनु दोनों की तरफ से उसके सास ससुर होने के नाते से उसे दे दिया। मेरा आशीर्वाद तो आरवी के साथ हमेशा रहा है। मुझे लगा अनु का वो लॉकेट उसके पास रहेगा तो अनु का आशीर्वाद भी सदा उसके साथ रहेगा। अनु खुद होती तो कुछ ना कुछ देती ही ना आरवी को, वो नहीं। एक पल रुककर, तो मैंने उसका लॉकेट ही आरवी को दे दिया। बस यही वजह थी बाऊजी, और आपके सवाल का जवाब। ये सुन कुछ देर तो दिनकर जी चुप रहे, और फिर चेतावनी भरे लहजे में बोले, फिर से ऐसी कोई गलती की तुमने तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। पहले खुद चले आए, फिर ये लॉकेट। एक बार कर चुके गलती, दूसरी बार भी कर चुके, तीसरी बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम सोच भी नहीं सकोगे क्या होगा तुम्हारे साथ। फिर से तुम मेरे बच्चों की तकलीफ की वजह बने तो हम अपने बच्चों की तकलीफ बाद में देखेंगे, पहले उस वजह को ही खत्म कर देंगे। भलाई इसी में है कि दूर जाने का जो कदम तुम उठा रहे हो, वो कदम फिर हमारे बच्चों की जिंदगी में नहीं पड़ने चाहिए। कोई वास्ता नहीं हमारा तुमसे, और ना तुम्हारा। दूर रहो मेरे बच्चों के साए से भी। मैं नहीं चाहता तुम्हारे कारण अब मेरे बच्चों को थोड़ी सी भी तकलीफ हो। अगर ऐसा हुआ तो छोड़ेंगे नहीं तुमको। दिनकर मेहरा अपने पोते अयांश मेहरा के जैसे एक पल नहीं लेगा अपने दुश्मन को सजा देने में, चाहे फिर वो मौते सजा ही क्यों ना हो, याद रखना। कह दिनकर जी ने उसी पल फोन काट दिया। क्रमशः